ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन।
ओम शांति। तो बहुत ही अच्छी तन की तंदुरुस्ती की एक्सरसाइज आप सभी कर रहे थे, जिसमें एकदम मगन हो चुके थे। लेकिन तन भी तब होगा जब इस तन में आत्मा होगी, है ना? तो तन की तंदुरुस्ती का ख्याल हम अवश्य रखें, लेकिन साथ साथ इस तन को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, उसकी तंदुरुस्ती का भी हमें ख्याल रखना होगा। उसके लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी होगी, और वो एक्सरसाइज वो हमारे भीतर चलेंगी, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम देख सकेंगे। ये वाली एक्सरसाइज सब कोई देख पा रहे थे, क्योंकि तन विजिबल है, सबको दिखता है, लेकिन आत्मा इन आंखों से विजिबल नहीं है, दृश्यमान नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अनुभव के नेत्र से, तीसरी आंख से देखी जा सकती है। तो इसलिए वो आंतरिक एक्सरसाइज होगी, जिसको मैं खुद ही अनुभव कर सकती हूँ, और मैं खुद तो जरूर अनुभव कर सकती हूँ, लेकिन वो जो पावरफुल वाइब्रेशंस चारों दिशाओं में फैलेंगे, उसको फिर दूसरे भी अनुभव कर पाएंगे। न सिर्फ दूसरे, लेकिन वो अनुभव पहले मेरे शरीर में, सबसे क्लोज कौन है आत्मा के? शरीर। तो शरीर में भी वो वाइब्रेशन फैलेंगे। तो शरीर के अंदर जो हम अभी एक्सरसाइज क्या कर रहे थे, इधर उधर सब एक्यूप्रेशर होना चाहिए, ताकि जहां जहां कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट है वो निकल जाए। तो ये जो आत्मा के भी वाइब्रेशंस शरीर के एक एक अंग में प्रवेश करेंगे, वहां के ब्लॉकेज खुलते जाएंगे। वरना सिर्फ अगर शरीर के ब्लॉकेज खोले और इधर के नहीं खोले, इसीलिए आजकल डॉक्टर्स कहते हैं ये ऑपरेशन हो गया है, एंजियोप्लास्टी हो गई है, अब 10 साल तक आराम से चल सकते हो। मतलब 10 साल के बाद क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता है वो मैंने ब्लॉक खोला है यहाँ का, इसका ब्लॉक तो उसने खुद ने खोलना है, पर वो खोलता नहीं है, इसलिए 10 साल बाद मेरे पास फिर से आना। बहुत ज्यादा। तो इसलिए मन की तंदुरुस्ती भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की तन की तंदुरुस्ती। तो तन की तंदुरुस्ती की बहुत अच्छी एक्सरसाइज की हमने समय दिया, अब इसके लिए हम समय देंगे। तो हमने देखा कि हमारे इस रिट्रीट का जो थीम है वो है थ्रू राजयोगा सेल्फ को एम्पावर करना। अब ये सेल्फ क्या है जिसको एम्पावर करना है, उसको कल हमने सुबह के सत्र में देखा कि क्या है ये सेल्फ जिसको मुझे एम्पावर करना है, वो एक चैतन्य शक्ति है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसको भले हमने नाम दे दिया आत्मा, चाहे सोल कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे रूह कहो, चाहे साइकी कहो, पर वो इशारा किस तरफ है? उस चैतन्य शक्ति की तरफ, उस स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ, कि जिसके होने से ये तन है, कि जिसके न होने से ये तन का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, वो उसमें तीन और फैकल्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन क्या करता है? विचार पैदा करता है। तो जैसे ही विचार मन करता है, तो आत्मा एक एनर्जी है ना, तो वो विचार उत्पन्न होते ही वो एनर्जी क्या करने लगेगी, वो शक्ति क्या करने लगेगी, प्रकंपित होगी, वाइब्रेट होगी। और वाइब्रेशन का क्या स्वभाव होता है? ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल करते इन द वेव फॉर्म, तरंग के रूप में प्रकंपन वाइब्रेशन यात्रा करते हैं। अब ये जो यात्रा करते हैं, ये यात्रा कहां तक चलेगी इसकी, कहां तक चलेगी इसकी यात्रा? हम जिसके प्रति सोच चलाएंगे, उसका डेस्टिनेशन वही होगा। इसीलिए टेलीपैथी में क्या होता है, हम क्या कहते हैं, अरे मैंने आज सुबह ही आपको याद किया था और आप पहुंच गए। मतलब क्या हुआ, मैंने विचार किया जिस व्यक्ति के लिए, तो वो मेरी एनर्जी वाइब्रेट होती हुई उस व्यक्ति तक पहुंची, वो भी एक एनर्जी है ना। इसीलिए तो कहा ना, अभ्यास क्या डालो, जैसे मैं आत्मा हूं वैसे हर एक अगला व्यक्ति जिसके साथ मैं इंटरेक्शन कर रही हूं, उसको भी किस रूप में देखूं, मैं आत्मा के रूप में। तो मेरा जो थॉट यहां क्रिएट हुआ, एनर्जी वाइब्रेट हुई, वो ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल करते करते जिस एनर्जी के प्रति मैंने थॉट किया, मतलब जिस आत्मा के प्रति मैंने विचार किया, उस आत्मा में वो टच करेगी, और वहां टच होते वो भी एनर्जी क्या होने लगेगी, वाइब्रेट होने लगेगी। और वाइब्रेशन फिर वापस, क्योंकि यहां पहले था संकल्प, संकल्प ने वाइब्रेशन का रूप लिया, वाइब्रेशन के रूप में ट्रैवलिंग किया, वहां जाके टच किया, वापस वो संकल्प का रूप ले लेगा। तो जो मैंने विचार किया, तो उसको मेरे को उसकी याद आई, उसको मेरी याद आई, तो प्रबलता आई उस विचार में, चलो आज मिलके आते हैं, ऐसे होता है ना। तो ये मन को आदत है कहीं ना कहीं किसी न किसी को याद करते रहने का। तो जिस किसी को भी याद करेगा वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ वो उसकी जो एनर्जी है वो भी ट्रैवल करना शुरू करेगी, उसके भी भाव आएंगे ना, सिर्फ मेरे भाव थोड़ी जाएंगे, अब वहां से भी आ रहा है तो उसके भी भाव आएंगे। अब होता क्या है, ये था कि कैसे एनर्जी एक दूसरे के पास जाती है। लेकिन इस आत्मा के लेसन में हमने और एक बात देखी कि मन विचार पैदा करता है, बुद्धि डिसाइड करती है, क्योंकि मन सिर्फ एक थॉट नहीं करेगा, एक काम के लिए दो तीन विचार पैदा कर देगा। लेकिन अब दो तीन में से किस एक को फाइनल करना है वो बुद्धि तय करेगी, और बुद्धि ने जिसको फाइनल किया उसको हमने प्रैक्टिकल में लाया, कर्म में लाया, और वो जाके फिर से रिकॉर्ड हो गया आत्मा में। आत्मा से विचार निकला था और वो पूरी प्रोसेस होके वापस आत्मा में रिकॉर्ड होने जा रहा है, और ये रिकॉर्डिंग जितनी गहरी उतना वो संस्कार का रूप लेता जाता है। तो कल जो हमने आत्मा का लेसन देखा उसमें संस्कार भी अनेक प्रकार के देखे होंगे। कितने प्रकार के संस्कार बहन जी ने बताया आपको? ध्यान पर है, 5 प्रकार के संस्कारों की बात की या नहीं की? हाँ की है ना। दिस इज तत्व, संस्कारों की बात चल रही है। वो 5 तत्वों से तो शरीर बना है, और वो शरीर जो कि 5 तत्वों से बना है उसका जो प्रमाण होना चाहिए वो प्रमाण जैसे ही गड़बड़ होता है शरीर घंटी बजाता है कि वो तत्व इसमें डालो। प्यास क्या है? पानी डालो की घंटी है। भूख क्या है? भोजन डालो की घंटी है। सफोकेशन क्या है? वायु डालो घंटी है। किसी दिन टेस्टी भोजन हो जाए ना, बहुत यहां तक खा लेते हैं, फिर बाप रे खा तो लिया, अब तो बड़ी बेचैनी, स्पेस छोड़ा ही नहीं ना। आकाश तत्व माना क्या स्पेस? तो घंटी बजाई ना बेचैनी ने, घंटी बजाई ना कि अरे मेरे को इतना नहीं खाना चाहिए था, स्पेस छोड़ना था मुझे। और फायर भी ना, तो ये शरीर बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है और ना ज्यादा बहुत कम, उसकी एक रेंज है। इस रेंज के बीच में मैं इस बॉडी के द्वारा टॉलरेट कर सकती हूँ, अदरवाइज स्वेटर लाओ, शॉल लाओ, या फिर अरे एसी लगाओ ना, कितनी गर्मी हो रही है। तो एक रेंज है अग्नि तत्व भी। तो अगर वो हमारा गड़बड़ होता है तो शरीर घंटी बजाकर हमें बता देता है इसमें ये जरूरत है। ऐसे ही आत्मा कौन सी घंटी बजाती है? आत्मा कौन सी घंटी बजाती है? इसकी घंटियां समझ में आ गई ना? आत्मा की घंटियां पता है क्या है? मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मेरा विल पावर बहुत लो हो गया है, मुझे विल पावर चाहिए, मुझे जीवन में आनंद चाहिए, मुझे सच्ची समझ चाहिए जीवन के प्रति, है ना? उसी लालसा ने तो यहाँ पहुंचाया आपको, उसी लालसा से तो आप यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए, वरना हमारे से बड़े बड़े स्पीकर तो आप स्वयं हैं। दुनिया की रीति से, दुनिया का अनुभव तो आप लोगों को हमसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ क्यों बैठे हैं? जीवन की सच्ची समझ। क्यों? तो जो संस्कारों की बात कही ना, तो ये हमारे ओरिजिनल संस्कार, कि हमने बताया कल के लेसन में कि आत्मा का घर परम धाम, वहां से हम यहाँ नीचे आए हैं रंगमंच पर एक्टिंग के लिए, पार्ट प्ले करने के लिए। और जो हम एक्टिंग कर रहे, पार्ट प्ले कर रहे, उसके लिए हमने क्या करना पड़ा? आत्मा ज्योति स्वरूप, इतना बड़ा शरीर उसको धारण करना पड़ा, माँ के गर्भ में गई। जब वो गर्भ शिशु रूप में तैयार होता है तब आत्मा जाती है ना, जाके यहाँ पर बैठ जाती, और वो शरीर और डेवलप होता, बाहर आती आत्मा और अब कर्म करना शुरू। और कर्म करना जब शुरू होता है तो जैसे कहा, जो जो कर्म करते जाएंगे वो किसका रूप लेता जाएगा? संस्कारों का रूप लेता जाएगा। मतलब इस आत्मा जो ऊपर से आई थी, इसके ऊपर और रिकॉर्डिंग चढ़ती जा रही है। इनको ही तो संस्कार कहा। तो रिकॉर्डिंग कौन कौन सी चढ़ी हमारी? तो कहते पास्ट बर्थ के संस्कार, ये बताए होंगे ना कल, पूर्व जन्म के संस्कार। और अभी प्रेजेंट जन्म में है तो प्रेजेंट जन्म में भी संस्कार बन रहे हैं। तो प्रेजेंट जन्म को हम देख पाते हैं, इसलिए प्रेजेंट जन्म के संस्कार को दो में हम कैटेगराइज कर लेते हैं। कैसे? ये माता पिता से मिले हैं और ये संघ से मिले हैं। ऐसे ही पास्ट में भी तो माँ बाप मिले होंगे ना, पास्ट में भी तो संघ मिला होगा ना, लेकिन चूंकि अभी उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, वो रेल पैक हो चुकी है, इसलिए हम सिर्फ उसको एक नाम दे रहे हैं, पूर्व जन्म के संस्कार। तो ऐसे इसको भी एक कर सकते हैं, है ना? पूर्व जन्म के संस्कार, प्रेजेंट जन्म के संस्कार भी माँ से मिले और संगत से मिले। तो चाहे वो पूर्व जन्म के हैं, चाहे इस जन्म के हैं, तो मिले उसी से, माँ बाप से। पिछले जन्म में भी तो माँ बाप, बिना माँ बाप के आत्मा इस धरती पर आएगी कैसे, यहाँ जन्म लेगी कैसे? और जब जन्म लिया है तो किसी न किसी के साथ होंगे ना, मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहते हैं ना, जंगल का प्राणी तो नहीं कि अकेला जंगल में रहेगा, सामाजिक प्राणी कहते हैं। तो सबके साथ रहते हैं तो संगत होती ही है, तो रंग लगता ही है, संस्कार चढ़ते हैं। तो ये हुआ कि चाहे माँ बाप से मिला, चाहे संग से मिला, आखिर कर्म किया ना, जीवन में आए मन कर्म करना, और उस कर्म के दौरान चाहे माँ बाप के साथ किया चाहे औरों के साथ किया, हुआ तो कर्म ही ना। तो कर्म करने के पश्चात जो संस्कार बने हैं, तो तीन को एक कर दिया अभी हमने, है ना, ये तीन थे, और एक क्या था, दृढ़ता के संस्कार। क्योंकि ये जो तीन प्रकार के संस्कार थे, पूर्व जन्म प्रेजेंट जन्म को दो में डिवाइड किया, इसमें ये कर्म करते करते हमने गुस्सा भी किया होगा कभी, झूठ भी बोला होगा कभी, किसी को धोखा भी दिया होगा, चीटिंग की होगी, किसी से ईर्ष्या की होगी, किसी के प्रति मन में नफरत आई होगी, वो संस्कार इन तीनों में है कहीं ना कहीं, और वो संस्कारों से हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं ना। क्योंकि जब जी रहे हैं मतलब ही आत्मा बॉडी के कनेक्शन में है, तो जितना ज्यादा बॉडी के कनेक्शन में उतना ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता, फिर जितना ज्यादा एक दूसरे के संपर्क संबंध में आ रहे, कहीं ना कहीं सिचुएशन खड़ी हो जाती, कहीं ना कहीं परिस्थितियां खड़ी हो जाती, और उन परिस्थितियों सिचुएशन के आधार से कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति चीटिंग का भाव आ जाता है, कहीं ना कहीं किसी से ईर्ष्या हो जाती है। तो ये रोज का जो हमारा चल रहा है, करते करते चूंकि ये कर्म के द्वारा बने संस्कार हैं, मेरे अपने नहीं हैं, तो कभी कभी ये थकान पैदा कर देते हैं ना, बेचैनी। आप गुस्सा कर लो कितना ही, उसके बाद क्या कहेंगे, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांति में रहने दो। तो ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर इस प्रकार के संस्कार हम डेवलप करते हैं, वो मेरे खुद के नहीं है, वो बॉडी में आने के बाद तैयार हुए हैं, और चूंकि वो मेरे खुद के नहीं, इसको क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। शरीर, कई लोग बोलते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बदले क्या बोलते हैं, आज मेरी प्रकृति ठीक नहीं है बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के पांच तत्वों से बनी है, और प्रकृति माना ही पर प्लस कृति, कृति माना रचना क्रिएशन, और पर माना दूसरा, तो दूसरे की रचना है, दूसरे की रचना माना बेहद के जो पांच तत्व है उससे थोड़ा थोड़ा उधार लेके ये तैयार हुआ है ना। तो मेरे संस्कार नहीं है ये, जो कर्म किया, जो गुस्सा आया, जो ईर्ष्या, ये मेरे खुद के संस्कार नहीं है, ये बॉडी में आने के बाद बॉडी कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ, संबंध संपर्क में परिस्थितियां आई, सिचुएशंस आई, वहां गुस्सा पैदा हो गया, ईर्ष्या पैदा हो गई। तो कभी कभी जब ये बहुत बेचैन कर देते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि श्रीमन भाई ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराई और इतनी शुभ भावना से कहा कि ये हमारा शिविर लगता है, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप तो आपको तुरंत लगा कि कैसे कांटेक्ट करना है, क्या करना है, क्योंकि है ना प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन चाहते हैं, ऐसे ही इधर भी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन चाहते हैं ना। बहुत हो गया गुस्सा कर करके, मेरा जीवन तो पता नहीं कैसा हो गया, जीवन की सच्ची शांति पता नहीं कहाँ चली गई है। नफरत रख रख के जीवन के अंदर से वो मिठास ही खत्म हो गई है। तो एक दिन तो मन में आता है बहुत हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए ना मैंने गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं जब किसी चीज की अति होती है तो अंत करीब आ जाता है ना। तो जब बहुत अति हो जाती है कहते छोड़ो ये झंझट, छोड़ो ये नफरत, छोड़ो ये गुस्सा, मैंने तो प्रेम से रहना है। यही है विल पावर से संस्कार खड़े करना। बेचैनी से गुजरे ना, तो एक बार मन में आया बहुत हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। यही हुआ था महात्मा गांधी के साथ। अंग्रेजों ने आधी रात में, खूब आंधी तूफान चल रहा है, ट्रेन में सफर कर रहे, काली चमड़ी और गोरी चमड़ी का भेद खड़ा करके नीचे घसीट के फेंक दिया, जो उसके मन को ठेस पहुंची। मात्र इस काली चमड़ी और गोरी चमड़ी के कारण इंसानियत की ये बेइज्जती, जो गहरी अंदर में चोट पहुंची, वहां उसके विल पावर ने काम किया। बहुत हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपना स्वराज्य स्थापित करना है, हमें परायों के राज्य में, परायों के अंडर में नहीं रहना। और सब जानते हैं उस घड़ी उस विल पावर ने जो संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो जाए स्वराज्य लेकर ही रहना है, लेकर रहे ना, भले उस समय फिर उस लेगने में कितनी सारी बातें आई, लेकिन वो जो एक संकल्प था विल पावर वाला, उसने मदद की इतनी सारी बातों को फेस करने की। ठीक ऐसे ही अगर एक बार मेरा अंदर से, जो कहा ना कि बुरे उस प्रकार से, वो जो घटना उसके साथ घटी जो बहुत ही अप्रिय लगी, उस अप्रियता से मन के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे ही जब हमारे मन में भी बहुत गुस्सा कर कर करके हम देखते हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया अभी, तब कभी अंदर से आवाज आती है मैंने अब गुस्सा करना छोड़ देना है, चाहे तुम लोग कुछ भी करो अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो ऐसे भी कई संस्कार हमारे बने, जिसको कहा विल पावर के आधार से बने संस्कार, दृढ़ता के आधार से बने संस्कार। पर ये विल पावर भी इस प्रकार की क्यों जागृत हुई, क्यों हमने गुस्से को नहीं पसंद किया, गुस्से का अपोजिट शांति क्यों पसंद किया, वो मेरा ओरिजिनल संस्कार, तो कहा वो पांचवे प्रकार के संस्कार, मेरे ओरिजिनल संस्कार सुख और शांति के, प्रेम और खुशी के, आनंद के, सच्ची समझ के कि हूं मैं कौन, आया किस लिए हूं यहां पर, वो जो मेरे ओरिजिनल क्यों कह रहे हैं उसको हम एक दुकान लगाते हैं कमाई का सोर्स, लेकिन वो कमाई का सोर्स बनाने के लिए भी पहले माना पैसा आना चाहिए, उसके लिए दुकान लगाई, लेकिन वो दुकान के लिए पहले पैसा चाहिए, दुकान लगा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो पैसा कमाऊं उससे पहले उस दुकान लगाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, पैसा। और वो कहां से आता है, बाप दादा से मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है ना हमारे को। ऐसे ही हम आत्मा भी उस घर से जब नीचे आए, उस पिता के घर से, कि यहां जाके एंजॉय करेंगे कर्म करेंगे, तो पिता ने भी तो कुछ संपत्ति दी भाई, वहां जाके कर्म करोगे आखिर किस आधार से करोगे, तो वो जो उस घर से लेकर आए ना हम संस्कार, वो मेरे पैतृक संस्कार, मेरे मूल संस्कार, मेरे ओरिजिनल संस्कार वो है सुख, क्योंकि पिता भी मेरा क्या है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। कल आपने देखा होगा जो मेरी क्वालिटीज वही उसकी क्वालिटीज है, पर मैं गागर जितना हूं और वो सागर जितना है, तो वो मेरे मूलभूत संस्कार। अब जब हमने कहा कि हमको थ्रू राजयोगा सेल्फ को एम्पावर करना है, अर्थात इस एनर्जी को, आत्मा को एम्पावर करना है, या दूसरे शब्दों में कहे कि इस बैटरी को चार्ज करना है, तो क्या करना है? ये जो पांच प्रकार के संस्कार देखे ना भी, तो सबसे पहला वाला संस्कार जो घर से लेके आए, पैतृक संपत्ति, पिता वाले संस्कार, मेरे खुद के संस्कार, मैंने अभी कर्म वर्म कुछ नहीं किया है फिर भी मेरे पास है, जिसको कई बार कंप्यूटर कहते इनबिल्ट फाइल्स होती है कुछ, है ना, तो वो मेरे इनबिल्ट संस्कार, पिता से मिले हुए संस्कार, मेरे खुद के संस्कार। बैटरी को एम्पावर करने का मतलब ही ये है, जो मेरी खुद की संपत्ति है, जो मेरे खुद के संस्कार है, उसको जीवन में यूज करना। हुआ क्या, हम इसके साथ उतरे, यहां आकर कर्म किया, इसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाते गए, इस लेयर के ऊपर लेयर, एक जन्म लिया, आत्मा यहां से निकली, पहली बार तो आत्मा वहां से आई, यहां गई, जीवन जिया, फिर टाइम आया यहां से निकल के, फिर दूसरे गर्भ में गई, वहां से आई, फिर जीवन जिया, फिर संस्कार बने, फिर वहां से टाइम आया, फिर निकले, फिर दूसरे शरीर में गए, संस्कार के ऊपर संस्कार, संस्कार के ऊपर संस्कार, यही तो लेके जा रहे, बाकी महल माड़ी रिश्ते नाते बिजनेस कुछ लेके जा रहे हैं हम लोग? कुछ भी नहीं लेके जा रहे, सिर्फ क्या लेके जा रहे हैं, संस्कार के ऊपर संस्कार। तो पहली लेयर थी मेरी ओरिजिनल संस्कारों की, लेकिन जैसे ही धरती पर आए, एक एक जीवन लिया, संस्कारों की लेयर उसके ऊपर चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई, और वो चढ़ते चढ़ते वो नीचे वाली लेयर इतनी दब गई, मैं कंप्लीटली भूल गई कि मेरे पास ये है भी। पहले जीवन में क्या किया था, मन में उठने वाला विचार, उसका आधार क्या होता है, मन में कोई विचार उठे उसका आधार क्या होता है, उसको इनपुट जो मिलेगा, जो इनपुट मिलेगा उसके आधार से विचार आएगा ना मन में। अब इनपुट दोनों तरह से मिलता है, एक बाह्य जगत से, इंद्रियां जो बाहर की ओर है वहां से, और ऑलरेडी मेरे संस्कार लेके आई थी मैं, वो आंतरिक जगत की प्रॉपर्टी। तो मन को कौन प्रभाव, मतलब मन में उठने वाले विचार का आधार बाह्य दुनिया, और उसके अंतर जगत में क्या स्टोर है। तो पहला बर्थ जब लिया तो अंतर जगत में सिर्फ एक ही लेयर थी, मेरे मूल संस्कारों वाली पैतृक संपत्ति, तो मेरे मन में उठने वाला विचार उससे प्रभावित था, और इसलिए पहला जन्म जो हमने लिया, खुशियां जीवन में अनुभव की। लेकिन वो जो हमने जीवन में अनुभव किया वो शरीर के द्वारा किया, तो शरीरों को भी देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, उसकी भी लेयर चढ़ती गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो लेयर थी जिससे मन प्रभावित होता था, उसके ऊपर दूसरी भी लेयर आ गई, तब उसका भी प्रभाव पड़ने लगा ना, समझ में आ रही बात। फिर और लेयर चढ़ती गई, तो नीचे वाली तो बहुत दब गई, अब उसका प्रभाव उस पर पड़ने ही नहीं लगा, ऊपर ऊपर वाले का पड़ता है ना, स्कूल में जाते तो क्या कहते, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसे ही बोलते हैं ना, जब फिर मैं फिर से रिवीजन करने बैठूं तो याद आएगा, अदरवाइज तो क्या होता है, आगे पाठ पीछे सपाट, यही होता है ना। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि हम आगे पाठ पीछे सपाट होने लगे, तो जो बाद बाद में संस्कार बनते गए ना, उसके प्रभाव में ज्यादा आए और बाद में जो संस्कार बने वो बॉडी में रहते बने, तो बॉडी धीरे धीरे बॉडी का कॉन्शियस मजबूत होने लगा और उसके कारण से जैसे का नया मकान बना है कुछ समय तक ठीक चलता है, उसके बाद उसमें दरारें आती है। ऐसे शुरू में पहला जन्म लिया, अंदर की लेयर जो थी सुख शांति की, मन उससे प्रभावित हो रहा था तो जीवन में खुशियां थी, आनंद था, प्रेम था, किसी के साथ कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता था, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होती थी, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मकान में दरारें आई तो हमारा भी बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ा, धीरे धीरे बॉडी के आधार से डिफरेंसेस खड़े हुए, कंपैरिजन, कंफ्लिक्ट, कंपटीशन, और उसी में तो ये सब अपने आप आ जाता है, क्या गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या। कंपटीशन ही नहीं हो, कंपैरिजन ही नहीं हो तो ईर्ष्या किस लिए आएगी, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो ये हमारे अंदर, तो ऊपर की लेयर वो बनती गई और हम उससे प्रभावित हो रहे। माना ही बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। अब सेल्फ को एम्पावर करना, बैटरी को चार्ज करना, माना अभी मुझे समझ मिली ये नीचे वाली लेयर जो है इसको इधर लाना है। क्लियर है, पहली लेयर लेके चले थे उसके ऊपर बहुत सारी लेयर खड़ी कर दी और ये ऊपर आ गई, आगे पार्ट पीछे सपाट, ये पीछे रह गया। अब बैटरी को चार्ज करना, सेल्फ को एम्पावर करना, माना इसको ऊपर लाना है। इसको ऊपर कैसे लाएंगे, इसको ऊपर कैसे लाएंगे, ऊपर वाला पोछा लगा दो, जो ऊपर आ गई है उसको पोछा लगा दो। टेबल पे साफ रखी थी मैंने लेकिन 10 दिन हो गए उसकी कोई सफाई नहीं की, तो क्या होता गया। अब मुझे याद है कि मेरी टेबल सफेद थी और इसके ऊपर खाने की थाली रखती हूं तो मेरा खाना भी बिगड़ रहा है। अब मैंने क्या करना है, पोछा लगा देना है। 10 दिन के बाद लगा रहे थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी पोछा लगाने में, लेकिन एक बार पोछा लग गया तो अभी वाइट आ गई ना। तो अभी यहां पर आ गए हैं आप लोग, यहां के वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, पोछा लगता जा रहा है ना, लगता जा रहा है ना। यहां आने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, वो जो बॉम्बे वाली टेंशन थी, डिप्रेशन थी, वो यहां फील हो रही है कुछ, पोछा लग गया ना, भूल गए माना क्या, पोछा लग गया। तो अब सिर्फ एक ही काम करना है कि अब 10 दिन तक बिना पोछे के नहीं रहना है। अभी तक रहे क्योंकि हम भूल गए थे ना, लेकिन अभी तो समझ मिल गई ना कि ये तो नहीं पोछा लगाया था ना, इसलिए इतना हो गया और इस कारण से मैंने कितनी परेशानियां झेली वो सब हम अनुभवी है। अब वो अनुभव से अब इसके ऊपर अभी और चढ़ने नहीं देना है, और चढ़ने नहीं देना है मतलब क्या करना है, और चढ़ने नहीं देना है मतलब क्या करना है। क्यों चढ़ते गया था इसके ऊपर, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण, सिचुएशंस के कारण, परिस्थितियों के कारण, यही था ना कारण। और इसीलिए यहां सिखाया जाता है पहला लेसन, पहला अभ्यास, अपने आप को समझो मैं आत्मा हूं, और हर दूसरा व्यक्ति जिसके साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं वो भी एक आत्मा है। आज तक मैं इसको मां समझती थी, इसको बहन समझती थी, इसको इंजीनियर समझती थी, इसको डॉक्टर समझती थी। अभी भी वो डॉक्टर है, अभी भी वो मां है, अभी भी वो बहन है, लेकिन उसके पहले का थॉट ये एक आत्मा है जो मां के रोल में है। एक आत्मा है जो इंजीनियर के रोल में है। पूछा लग गया, चढ़ने ही नहीं देंगे ना हम अभी, चढ़ा तो इसके कारण था ना मैल, चढ़ने ही नहीं देना है। अर्थात अब जीवन आत्मस्मृति के साथ जीना ही सेल्फ एम्पावरमेंट की फर्स्ट स्टेप, सेल्फ एम्पावरमेंट की फर्स्ट स्टेप। अब ये जो मन है इसको आदत है किसी न किसी के साथ कनेक्ट हो जाने की, क्योंकि इंसान के लिए कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो संग किए बिना रह नहीं सकता है, उसको संग चाहिए ही। और दूसरा फैक्ट ये है कि संग का रंग लगे बिना रह नहीं सकता, चाहिए संग और संग का रंग लगे बिना रह नहीं सकता, और इसीलिए कहा गया है सत्संग। सत के संग में रहो, किसको सत के संग में रखना है, इस पर चढ़ी ना, लेयर्स तो यहां चढ़ रही है ना, तो इसको सत का संग देना है। लेकिन जैसे कहा हम अपनी असलियत भूल गए, मैं आत्मा हूं यही भूल गए, तो किसको संग देना है, आत्मा को संग देना वो भी भूल गए, अपने को समझा ये, तो इसको संग देते हैं सत का, अर्थात वो कथा कीर्तन के नाम पे जाके बैठते हैं, वहां कहानियां सुनते हैं, कहते हम सत्संग करके आ गए। और मन किधर था, अगर मन उधर रहा होता रियल में तो उन कहानियों में कुछ न कुछ मोरल होता है, वहां पे जो भी कहानी सुनते हैं कुछ न कुछ मोरल होता है, वो मोरल पकड़ के आते, लेकिन पकड़ा नहीं, वहां जाके सुना, सत्संग किया, कहा हम धार्मिक लोग हैं, और आके किया वही जो पहले कर रहे थे। इसलिए आजकल की यंग पीढ़ी क्या कहती है, अगर आप उसको कहो बेटा आप भी चलो सत्संग में, तो क्या कहता है, क्या होता है सत्संग में, आप जाती हो फिर क्या करती हो आके, यहाँ पे आने के बाद क्या करती हो, जो सुन के आती हो कुछ प्रैक्टिकल करती हो, यही बोलते हैं ना बच्चे, मतलब वहां पे सिर्फ शरीर से गए, मन को संग दिया ही नहीं। और मन को संग उस परमात्मा का दिया नहीं, क्योंकि उस परमात्मा की भी पूरी पहचान नहीं है ना, क्योंकि अगर देते भी है समझो तो एक घड़ी एक तस्वीर, दूसरे घड़ी दूसरी तस्वीर आ जाती है, तीसरे घड़ी तीसरी तस्वीर आ जाती है, ऐसा होता है ना। और इसलिए कहा उस परमात्मा की भी सही पहचान प्राप्त करो जो कल आपको दी, कि वो भी एक आत्मा है, तो मैं एक आत्मा हूं, जिस आत्मा को कहा एक एनर्जी है, एक चैतन्य शक्ति है, तो वो पिता भी एक आत्मा है, वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक शक्ति है, लेकिन उसके साथ जुड़ा है परम, तो परम एनर्जी है, वो सुप्रीम एनर्जी है। और सुप्रीम माना ही क्या, किस बात में सुप्रीम, मैं आत्मा हूं पॉइंट ऑफ लाइट, वो भी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, परम इसमें नहीं कि वो बड़े साइज है, ऐसा नहीं, परम किसमें, देखा ना कल, उसकी क्वालिटीज मेरी क्वालिटीज सेम है, लेकिन मेरी क्वालिटीज गागर जितनी, उसकी सागर, इसमें ही तो परम है वो, और क्या है। तो उस परम के साथ, और मेरे में क्या है कि मेरी क्वालिटीज उसके जैसी है जरूर, लेकिन मैं आत्मा इस रंगमंच पर आकर शरीर धारण करके इसके ऊपर दूसरी दूसरी लेयर्स चढ़ाती जा रही हूं जो कि उसकी अपोजिट है। मतलब अब इतने सारे जन्म लेने के बाद आज की डेट में अब समझ मिलने के बाद मेरे पास दोनों है, ओरिजिनल दबी हुई और बाकी दोनों है। अब जब हम कहते कि मन किसी न किसी के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो मन किसके साथ कनेक्ट होता है? हर अगला व्यक्ति जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है उसके पास ये दो प्रॉपर्टी है, ओरिजिनल भी और ओरिजिनल तो दबी हुई है ना। तो जब मैं किसी के साथ कनेक्ट होता हूँ उसकी ऊपर की लेयर के साथ कनेक्ट होता हूँ, और ऊपर की लेयर में तो आज कलयुग के एंड में क्या है पता है ना, अभी अभी हमने देखा ना, तो सबके साथ वही है। तो जब हम किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते रिस्क है, कि कनेक्ट हो जाते पहले देखा ना कि एनर्जी, मन ने थॉट किया, एनर्जी क्रिएट होगी, वाइब्रेट होगी, वो जाके जिसके प्रति क्रिएट किया वहां जाके टच होगी, उसको भी वाइब्रेट करेगी और वो भी इधर आएगी। तो अब मैंने किसी के प्रति संकल्प किया, यहां से एनर्जी उधर गई, उधर वाली एनर्जी में क्या है, ऊपर लेयर में गुस्सा है, नफरत है, उसको ट्रिगर करेगा तो मेरे पास क्या आएगा? मैं ऑलरेडी मैं गुस्से में थी, मेरा भी संस्कार है, वहां से भी गुस्सा आ रहा है, तो दिनों दिन बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। दिनों दिन सेल्फ क्या हो रहा है, डिसएम्पावर हो रहा है। और इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको आदत है कनेक्ट होने की। ये कनेक्ट हुए बिना, किसी को याद किए बिना रह नहीं सकता है। और इसलिए राजयोग माना ही इस आत्मा रूपी बैटरी को उस परमात्मा रूपी पावर हाउस से कनेक्ट करके रखना, ये है राजयोग। योग माना जोड़। तो हम व्यक्तियों से जब कनेक्ट होते वो भी योग है, परंतु राजयोग कि आत्मा से कनेक्ट नहीं होकर परम आत्मा से, और उस परमात्मा से कनेक्ट होने से सेल्फ एम्पावर होगा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्तियों से कनेक्ट हो रहे थे, हर व्यक्ति माना हर आत्मा में वो दोनों बातें हैं ना। हो सकता है कभी कभी हम उसके प्रेम वाले गुण से भी कनेक्ट हो जाएं, पर नॉट ऑलवेज। लेकिन उसके साथ कनेक्ट होंगे तो वहां दो की मार्जिन ही नहीं है, वहां दो की मार्जिन ही नहीं है। वो सदा ही क्या है, प्रेम का भंडार है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, खुशियों का सागर है, सत्यता का सागर है, ज्ञान सत्य ज्ञान से भरा है। वहां कोई झूठे ज्ञान की मार्जिन नहीं है, वहां कोई गुस्से की मार्जिन नहीं है, वहां कोई अशांति की मार्जिन नहीं है, वहां कोई उदासी की मार्जिन नहीं है। तो जब जब हम उससे कनेक्ट होंगे सेल्फ एम्पावर ही हो जाएगा, जबकि व्यक्तियों से कनेक्ट होने में रिस्क है। इट इज जस्ट लाइक आजकल देखो, हम उस आत्मा को अगर वेबसाइट के रूप में कंसीडर करें तो आज कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, और वेबसाइट से आप सिर्फ कनेक्ट हो जाओ पूरा का पूरा डेटा डाउनलोड हो जाता है, और वेबसाइट्स में वायरस है, बहुत वायरस है ना। वो एंटीवायरस डालना पड़ता है कंप्यूटर में, तब जाके हम कोई वेबसाइट को, अदरवाइज कोई कहते हैं भैया इसमें नहीं, यहां तक कि पेन ड्राइव लेके जाओ ना तो पहले स्कैन करेगा, अरे क्यों टाइम लगा रहे, सब ठीक है ना, नहीं भैया मुझे अपना कंप्यूटर खराब नहीं करना है। तो यहां पे स्कैनिंग चाहिए नहीं चाहिए, या तो किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं फटाफट, तो कितने वायरस जाते होंगे। ऑलरेडी मेरे इसमें वायरस है, फिर औरों से कनेक्ट होते होते कितने सारे वायरस, और फिर हम कहते हैं जीवन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है। तो ये आत्मा की घंटियां तो बज रही है ये, कि तुम कनेक्ट किससे हो रहे हो, उससे कनेक्ट हो जहां से मुझे प्रेम मिले, हम कनेक्ट वहां हो रहे हैं जहां से नफरत मिले, हम कनेक्ट वहां से उनसे उनके साथ हो रहे जिनके पास खुद के जीवन में उदासी है। तो ये भी योग है, कनेक्ट होना माना ही योग है। और ये कनेक्ट होना सिखाना पड़ता है क्या? एक बच्चा है, आप उसको जब धीरे धीरे बड़ा होता है बोलना सिखाते हो, कैसे बैठना है, कैसे चलना आप सिखाते हो, लेकिन कैसे सोचना वो नहीं सिखाते हो। वो अपने आप मम्मी पापा को याद करता है, आप थोड़ी सिखाते हैं। जैसे श्वास लेना नहीं सिखाया जाता, वैसे याद करना भी सिखाया नहीं जाता है, वो अपने आप। तब कहा योग सीखना नहीं पड़ता है, योग तो हमारा लगा ही रहता है, परंतु राजयोग सीखना पड़ता है। और राजयोग सीखना माना है तो उसमें भी योग, सिर्फ ये अटेंशन रखना है कि मेरा मन किधर कनेक्ट हो गया, व्यक्तियों के बदले उस परमात्मा के साथ मैंने कनेक्ट होना है। बस इतना सा अटेंशन रखा कि मन इधर नहीं कनेक्ट होके, उस परमात्मा का परिचय तो मिल गया ना, उसके पास कनेक्ट। राजयोग है ये राजयोग है। और आपकी बैटरी एम्पावर, और दूसरे से कनेक्ट हुए बैटरी डिसएम्पावर। और इसीलिए क्यों कहते हैं राजयोग कोई आधे घंटे बैठकर अभ्यास नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, पता है ना ये कनेक्ट होता ही रहता है। आप सुबह उठो ये चलना शुरू हो जाता है, आप बिस्तर पे जाओ कोशिश करें नींद ना आए तो भी ये गाड़ी चलती रहती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको स्टॉप, बताया ना ब्रेक बड़ा मुश्किल लगता है एक्सीलेटर इतना दब गया है कि ब्रेक मुश्किल लगता है, और कभी फिर ब्रेक इतना लग जाता है कि एक्सीलेटर मुश्किल काम करता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन राजयोग का जब अभ्यास करेंगे तो ब्रेक और एक्सीलेटर मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये उठते बैठते अभ्यास करना है, तो बेशक बैठकर भी अभ्यास करना है, क्योंकि उसमें फुल कॉन्सेंट्रेशन आपका उधर होगा। और चूंकि मैं मानव हूं, कर्म करना मेरा स्वभाव है, कर्म के बिना मैं रह नहीं सकता, तो कर्म करूंगा, लेकिन फिर मार्जिन है वायरस से कनेक्ट हो जाने की। इसलिए उठते बैठते भी बीच बीच में चेक करते रहना है ये कहां जा रहा है। तो आज दिन तक हम भगवान के साथ कनेक्ट तो हो रहे थे, पूजा के नाम पर, माला फेरने के नाम पर, मंत्र जाप करने के नाम पर, व्रत उपवास करने के नाम पर, हवन तप करने के नाम पर, तीर्थ करने के नाम पर, मंदिर में जाने के नाम पर, ये सब क्या विधि थी? भगवान से जुड़ने की विधि थी। लेकिन हम जब किसी से भी जुड़ते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो तीन लेवल होते हैं। हम तीन शब्द सुनते हैं, मन वचन कर्म, या फिर मन वाणी कर्म, या फिर मनसा वाचा कर्मणा। ये तीन लेवल से हम कम्युनिकेशन करते हैं। उदाहरण के लिए वाचा बोलकर, हमने बोला आपने सुना, कम्युनिकेशन हो रहा है। या फिर कर्म, मेरे एक्शंस के द्वारा, मैं अपनी एक्शंस के द्वारा आपको मैसेज कम्युनिकेट करती हूँ, आप अपनी एक्शंस के द्वारा अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। ये कर्म लेवल पर बोलते हैं, वाचा लेवल पर। और मन, मैं सोच क्रिएट करती हूँ आपके प्रति, और आप उसको कैच करते हैं टेलीपैथी, तो ये सोच के द्वारा। लेकिन जब हम भगवान के नाम पर कनेक्ट होने के नाम पर, लेकिन इन तीनों में से पावरफुल कौन सा? मन की लेवल का ना। और बोल के लेवल पर शायद मैं आपके प्रति बोलूं लेकिन ध्यान दूसरी तरफ रखूं, ऐसे हो सकता है। तो यही हमने किया, भगवान को याद करने के नाम पर चाहे मैंने अगरबत्ती जलाई, चाहे मैंने दिया जलाया, चाहे मैंने पुष्प अर्पित किए, चाहे मैंने आरती की थाली घुमाई, चाहे मैंने व्रत रखा, उपवास रखा, माला फेरी, मंत्र जाप किया, ये सब या तो मुख कर रहा था या तो हाथ कर रहे थे, और मन तो कहीं, और इसलिए मन माना ही आत्मा, माना ही सेल्फ, एम्पावर हुए नहीं। तो राजयोग माना आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, मन उस परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाए। तो कई बार तो ये प्रॉब्लम आती है कि भगवान को याद करने बैठते हैं, भगवान याद ही नहीं आते हैं। शिकायत है ना ये सभी को? सभी को यही शिकायत रहती है ना? देखो, किसी व्यक्ति को याद करने के लिए मुझे फोटो की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को याद करने के लिए माला पहनने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को याद करने के लिए मुझे आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है, और किसी व्यक्ति को याद करने के लिए 10 मिनट सेपरेट निकालने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान के लिए आंख भी बंद करना है मुझे, 10 मिनट सेपरेट भी चाहिए, सामने एक तस्वीर भी चाहिए, और उसके बाद भी फिर कहते कि मन नहीं लगता है। ऐसा ही होता है ना? इतने सारे साधन भी चाहिए, उसके बाद भी मन नहीं लगता है, तो बैठे थे भगवान के भजन को और ये मन तो कोई और भजन कर रहा था। और इसलिए उन विधियों को अपना कर भी सेल्फ एम्पावर नहीं हुआ और ही डिसएम्पावर हुआ, बैटरी और ही डिस्चार्ज हुई। और बैटरी जितना ज्यादा डिस्चार्ज होगी, इन द बिगिनिंग बैटरी का डिस्चार्जिंग रेट बहुत स्लो होता है, लेकिन आफ्टर 50% डिस्चार्जिंग रेट इंक्रीजेस, तेजी से बढ़ता है। हमारा भी डिस्चार्जिंग रेट आज कितना है? थोड़ी सी बात हुई नहीं है, इतना गुस्सा आ जाता है, बात मत पूछो। मतलब क्या है? डिस्चार्जिंग रेट बहुत है ना? और वो कब होता है डिस्चार्जिंग रेट बहुत? डिस्चार्जिंग के कगार पर आ गई है तब होता है। तो हमें ये कन्फर्म अंदर मन में ठान लेना है कि ऑलरेडी मेरी बैटरी डिस्चार्ज पड़ी है, और मैं और जो सब सबकी डिस्चार्ज है, मुझे एक की नहीं, सब वहां से आए हैं, कई सारे जन्म लेके बॉडी कॉन्शियसनेस में आके, परिस्थितियों में आके, सिचुएशन में आके डिस्चार्ज करके बैठे हैं। अब मैं डिस्चार्ज से कनेक्ट हो रही हूँ और डिस्चार्ज होने जा रही हूँ, और वायरस आ रहे हैं। ऐसा ही होता है ना? बच्चे को घर पे अच्छी सभ्यता सिखाते हैं, लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हुआ, घर की चार दीवारी से बाहर गया, गाली गलौज सीख के आ जाता है। तो इसने भी कितना कुछ सीख लिया, घर से नीचे आया है ना, उस पिता के घर से नीचे आए हैं, कितना कुछ इसमें भर लिया है हमने। अब क्या करना है? पोछा लग गया है, अब वो लेयर को हमेशा ऊपर रखना है। अगर वो लेयर ऊपर रहेगी तो कहां मन में उठने वाला विचार जो ऊपर की लेयर है उससे प्रभावित होगा, है ना? और इसीलिए यहां पर सिखाया जाता है राजयोग करना माना अपने आप को याद दिलाना, मैं एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये क्यों कह रहे हैं अजर अमर अविनाशी हूँ? वो पहली वाली लेयर दब गई है, खत्म नहीं हुई है, मेरे पास है। इसीलिए क्यों कहा जाता है सुख शांति जीवन में चाहिए? भीतर झाको क्यों कहा जाता है? भीतर है, दब गई है, भीतर झांक कर उसको इमर्ज करो। ऊपर वाले को पोछा लगाएंगे तो इमर्ज हो जाएगी ना, और ऊपर वाले को पोछा लगाना माना ही दृढ़ संकल्प कर लेना। इन संकल्पों ने, जैसे महात्मा गांधी ने किया ना, इनके राज्य में तो यही हाल हो गया, कुछ भी हो जाए मुझे स्वराज्य स्थापित करना है। अपने आप से दृढ़ता, ये ऊपर की लेयर से मेरा जीवन का ये हाल हुआ है कि मन को बेचैनी है, रातों को ठीक से सो नहीं पाती हूँ, उसका असर शरीर पर आता है, एक के बाद एक बीमारी आती है, फिर डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है, इतनी इतनी गोलियां खानी पड़ती है बावजूद उसके ठीक। कहा ना, इधर का ब्लॉकेज गया नहीं तो इधर का तो क्या होगा। तो ये अपने आप से बातें, ये दृढ़ता, ये ऊपर वाले को पोछा लगा देगी। लगाया ना यहाँ पे है तो, लग गया है ना यहाँ पे है जब तक, तो क्यों यहाँ पे लग गया? वो ज्ञान का चिंतन और यहाँ रहने वाले उनके भी वही वाइब्रेशन। तो अपने अपने घरों में लौटकर, अपने अपने ऑफिस में लौटकर, अपने अपने दुकान में लौटकर, अगर मैं एक अकेला भी ये संकल्प करूं मैंने ये वाइब्रेशन फैलाने हैं, तो उसका असर उन पे धीरे धीरे आएगा ही नहीं का। आज होता क्या है, कोई एक नई ड्रेस पहनने की पद्धति एक शुरू करता है, पांच देखते हैं वो भी शुरू कर देते हैं, ऐसे ही तो शुरू होता है। जब निगेटिव इस तरीके से शुरू हो सकता है, पॉजिटिव के शुरू होने की भी तो यही रीति है, यही रीति है ना। तो हम ये कभी नहीं कहे कि बहन जी यहाँ के वातावरण में तो हम निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं है, वहां पे अब कैसे होगा, नहीं। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर भी जो आप अनुभव कर रहे हैं ना, लाइटपना या खुशी, वो आपके अंदर की है, बाहर की कुछ नहीं। बाहर वाले ने सिर्फ आपको मदद किया अंदर तक पहुंचने में कि हाँ ये तो मेरे पास है, और वो आप अपना अनुभव कर रहे हैं, दूसरों का नहीं अनुभव कर रहे हैं। दूसरे तो आपको मदद कर रहे, आपके पास भी उसको उठाओ। तो वहां जाकर भी अगर मैं ये करूं तो मैं दूसरों के उठाने में मदद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है हर आत्मा वही वाले संस्कार लेके आई है, ऊपर वाले तो बाद में बने हैं। तो मैं अगर इस स्मृति में रहता हूं कि मैं एक आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप, तो वो वाइब्रेशन तो फैलेंगे ना, तो दूसरों को भी ट्रिगर होगा, और इस तरीके से उस वातावरण को भी हम यहाँ के वातावरण में बदल सकते हैं। तो कनेक्शन राजयोगा, तो क्या भगवान को याद करने में दिक्कत? कारण एक तो पहचान पूरी नहीं, तो पहचान इसलिए कल दे दी गई, और दूसरा कोई व्यक्ति मेरी यादों में कब समाता है, एक तो पहचान हो तब, और दूसरा उसके साथ गहरा संबंध हो। अगर गहरा संबंध नहीं होता है तो भी याद नहीं आते हैं। जैसे कई बार जिस माँ बाप के घर में हमने जन्म लिया है, उसके आधार से माँ बाप के साथ साथ दूसरे रिश्ते भी अपने आप मिल जाते हैं, मामा चाचा काका आदि सब अपने आप मिल जाते हैं, हमको बनाने नहीं पड़ते। बस मैंने इस माँ बाप के घर में जन्म लिया इसलिए मुझे ये मामा चाचा काका अपने आप मिल गए हैं। लेकिन अगर उन रिश्तों में मैंने प्यार नहीं घोला है, अगर उन रिश्तों को मैंने कायम नहीं रखा है, तो फिर क्या कहते, हाँ वो मेरे मामा जी तो लगते हैं, परंतु हम लोगों का इतना कुछ है नहीं उनके साथ, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो सिर्फ रिश्ता होना काफी नहीं है, उसको कायम भी रखना होता है। और रिश्ता माना क्या, मैं आपके लिए सोचूं, आप मेरे लिए सोचे, तो रिश्ते बनते हैं। अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचती हूँ, आप भी अच्छा सोचते हैं, तो प्यारे रिश्ते बनते हैं। लेकिन मैं आपके लिए अच्छा नहीं सोचती, आप भी अच्छे नहीं सोचते, तो कड़वे रिश्ते बनते हैं। तो कड़वा रिश्ता भी याद आता रहता है, परंतु वो मेरी बैटरी को डिसएम्पावर करता रहता है। लेकिन प्यारा सा रिश्ता मेरे सेल्फ को, मेरी बैटरी को एम्पावर करता रहता है। तो अब मैंने क्या करना है, उसके साथ सारे रिश्ते बनाने हैं। रिश्ता माना ही एक अच्छा वेंटिलेशन किसको माना जाता है, इधर भी खिड़की हो, इधर भी खिड़की हो, हवा इधर से आए, इधर से निकल जाए, फिर इधर से हवा आए, इधर से निकल जाए, इसको कहते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन। ऐसे ही रिश्ते भी अच्छे प्यारे तब यहां से एनर्जी उधर जाए और वहां की एनर्जी इधर आए। और कौन सी वाली, हवा बदबू वाली भी आ सकती है ना, लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ता है, खुशबू महकाने वाली हवा आए और जाए। यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा कि खुशबू, वो प्यार की महक यहाँ से जाए, वो शांति की महक यहाँ से जाए, वो प्रेम की खुशी की आनंद की शक्ति की वो वाइब्रेशन वहां तक जाए और वहां से भी भले उसके थोड़े बहुत वैसे भी हो ना, लेकिन अगरबत्ती अगर पावरफुल है तो बदबू को क्या करेगी, तो उधर से भी वहां से पावरफुल आएगा। तो ये रिश्ते उसके साथ हमारे हैं, लेकिन यहां तक तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे, गा लेते हैं, गा लेते हैं ना। तो रिश्ते तो है पर यहां से नहीं बने हैं, वो रिश्ते यहां से बने हैं, और यहां से बने हैं तो ये तो किसी और रिश्तों के साथ लगा पड़ा है। तब उसके साथ रिश्ता, और रिश्ता माना क्या होता है कि उसके साथ अपने भावों की लेन देन, अपने जीवन में आने वाली हर बात की लेन देन। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा या बुरा, हम किसको शेयर करते हैं, किसको शेयर, जिसके साथ मेरी बहुत घनिष्ठता है, जिसके साथ मेरी बहुत आत्मीयता है, और अगर समझो मैंने उसको शेयर किया कुछ हुआ नहीं, फिर किसको शेयर करते हैं, नेक्स्ट घनिष्ठता वाला, उसके साथ भी करके नहीं हुआ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और नेक्स्ट नेक्स्ट करते वो लिस्ट भी खाली हो जाती मेरे रिश्तों की। तब कहते हैं भगवान अब तो मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। तो कितना घनिष्ठ रिश्ता है आप सोच लो, लास्ट में याद आया ना, जिसके पास मार्जिन है कि वो मुझे पॉजिटिव देकर एम्पावर करेगा, निगेटिव की मार्जिन ही नहीं है उसको लास्ट में, और जिनके पास मार्जिन है कि वो मुझे डिसएम्पावर करेगा, तो क्यों नहीं बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो जैसे शरीर पांच तत्वों से बना है, वो पांच तत्व हम देते रहते हैं तो सोर्स पता करते हैं ना। आज अगर डॉक्टर के कैल्शियम की कमी है तो बताएगा डॉक्टर साहब फिर क्या खाऊं तो कैल्शियम मिलेगा, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। तो ऐसे ही अगर आज मेरे जीवन में प्रेम खुशी आनंद की कमी है, क्या करूं मैं, किसके साथ कनेक्ट हो जाऊं, क्या खाऊं, तो उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाऊं जिसके पास वो सोर्स है प्रेम का, खुशी का, आनंद का। तो जैसे ही एक बार उसके साथ मैं कनेक्ट होती हूं उस प्यारी सी एनर्जी के साथ, तो संबंध में क्या हुआ, एक तो उसके साथ मेरी पहचान हो गई है, फिर संबंध जुड़ गया है, फिर प्यारा सा रिश्ता होने के कारण प्राप्तियां हो रही है। अब प्राप्ति भी होने लगी तो वो हस्ती मुझे बार बार याद आएगी या नहीं आएगी, कि याद करने पड़ेगा मुझे। लेकिन आज तो उल्टा है ना, ये सब जल्दी याद आते हैं, वो देरी से याद आता है, क्यों, क्योंकि उसके साथ इतना प्यारा सा रिश्ता और वो अचीवमेंट भी नहीं कर पाए ना, क्योंकि हम उससे कनेक्ट कैसे हो रहे, ऊपर वाली लेयर से कनेक्ट हो रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी मेल नहीं हो रहा है ना। आज रेडियो स्टेशन है, टीवी स्टेशन है, कितने सारे प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, टेलीकास्ट होते हैं, लेकिन वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और एयर में थ्रू ट्रांसमिशन टावर ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। अब वही वाला प्रोग्राम मैं देख सकूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास रिसीवर सेट चाहिए, और साथ साथ जिस फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम मैंने देखना है, मेरे रिसीवर सेट को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ेगा। अगर मैंने ट्यूनिंग की है तो मेरे रेडियो पर, मेरे टीवी पर वो आ रहा है, और जैसा वो प्रोग्राम आ रहा है उसका मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है, पड़ता है ना वैसा मन की स्थिति पर प्रभाव। आज उठते ही खबरें सुनते हैं, उठते ही मूड खराब, यहाँ पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया, मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। और उठते ही आस्था देख रहे, सत्संग देख रहे, मन का स्थिति में चेंज आया, आता है ना। तो इसलिए हमें कनेक्ट किससे हो रहे वो बहुत ध्यान रखना है। तो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग हो सकता है, मैंने विविध भारती से कनेक्ट किया, बहुत सुंदर सुंदर गाने, और जैसे जैसे गाने कानों पे जाते हैं मैं भी गुनगुनाने लगती, मेरी भी स्थिति अच्छी बन गई। एक पड़ोसी फिर आया, अरे आपके यहाँ इतने अच्छे गाने बज रहे हैं, हमारे यहाँ तो नहीं आ रहे। अरे भाई इस फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग तो करो। तो हमने भगवान के साथ याद तो किया पर प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं की ना, और ट्यूनिंग नहीं होने के कारण वो प्रेम खुशी का जो सागर है वो मेरे पास आया नहीं और मुझे प्राप्ति हुई नहीं, और जहां से प्राप्ति नहीं होती तो मन अपने आप दूर हो जाता है ना। यही हमारा कारण रहा कि भगवान को याद करने बैठते हैं फिर भी भगवान याद में नहीं आकर और याद आते, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ जीवन की छोटी मोटी फिजिकल तो प्राप्तियां हो रही थी ना, तो मन कहता वहीं चलो यहां से क्या मिलना है। तो ये चार आधार होते हैं कि कोई मुझे याद आए, अब ये चारों आधार उसके साथ लगा दे। स्वयं का पूरा परिचय है, पिता का पूरा परिचय मिल चुका है, अब उससे हम संबंध जोड़े, और संबंध माना ही लेन देन, और वो प्यारा सा संबंध शुभ भावना हर एक के प्रति। वहां से मेरे को शुभ भावना है, वो मेरा पिता है, मेरा पिता है, वो मेरे जीवन का रक्षक है, वो जो भी मुझे गाइडेंस देगा मेरे भले के लिए देगा। जैसे एक बच्चे के प्रति अगर बच्चा कुछ ऐसा करता है माँ बाप थोड़ा कहते तो बच्चे कहते मम्मी आप तो, बेटा हम तुम्हारे रक्षक है, तुम्हारा इसमें भला है, तुमको अभी अनुभव नहीं है दुनिया का, हमने अनुभव किया है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, कहते हो ना। तो अगर आज मेरा पिता भी ये कहता है कि तुमने इतना समय से बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे हो वही तुम्हारा कारण बना है, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ हित चिंतक हूँ तभी मैं तुमको कहता हूँ अब सोल कॉन्शियस होकर चलो मेरे से कनेक्ट हो तो वहां से आपको पावर मिलेगी। तो इतनी शुद्धता इतना प्यार रखकर उसके साथ जब कनेक्ट होंगे वो प्राप्तियां होने लगेगी, जितनी ज्यादा प्राप्ति उतना ज्यादा संबंध वो जो बॉन्ड है ना वो मजबूत होता जाएगा, इतना मजबूत कि फिर टूटेगा नहीं। रात को जब दही जमानी होती है तो दूध में जामन डालते हैं तब क्या कहते हैं अभी इसको हिलाना नहीं, नहीं तो वो न रहेगा दूध न रहेगी दही। तो जब तक वो जमे जमे तब तक नहीं, जमने के बाद भले हिलाओ। इसलिए यहाँ पर तीन चार पांच दिन क्यों बुलाया जाता है, तीन चार पांच दिन में आप ये पक्का बॉन्ड बना लो कि बाहर जाकर हिलाने वाले भी बहुत मिलेंगे पर हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया है कि प्राप्ति इसी में है। सिर्फ ये नहीं समझा है प्राप्ति इसी में है, वो प्राप्ति का अनुभव किया है, उससे अपने आप को भरपूर किया है। तो ये है राजयोग, जो आधा घंटा सुबह शाम बैठकर भी करो और चलते फिरते भी। अगर चलते फिरते ध्यान नहीं दिया ना फिर वायरस वाली वेबसाइट से फिर कनेक्ट हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर फिर मेहनत करनी पड़ेगी वायरस को भगाने, फिर पहले एंटीवायरस ढूंढो इस पर कौन सा, ये कौन सा वायरस है इसके लिए कौन सा एंटीवायरस चाहिए। तो उस जंजाल में पड़ने से अच्छा है उससे कनेक्ट ही मत हो ना, कनेक्ट उससे हो जहां वायरस आता ही नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत जो भी मिट्टी धूल आ गई वो भी साफ हो जाता है। तो चलते फिरते इसलिए कहते हैं, सिंधी में भी गाते अठही पहर, क्या बोलते हैं मेरा ध्यान आठों पर गिने जाते हैं ना, 24 घंटों को आठ पहर में डिवाइड करते हैं ना, कि मेरा मन आठों पहर तेरे गुण गाता रहे। याद करना माना ही क्या होता है, कोई जब याद आता है तो उसकी कुछ विशेषता याद आती है ना, भई ये कैसा दिखता है, इसमें क्या विशेषता है, इसका क्या जॉब है। अब इसीलिए तो जिसको याद करना उसका पहले पूरा परिचय दे दिया, उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, वो दिखता कैसे है, वो सब पहले बता दिया। अब उसको याद करो, उसकी छवि को देखो, उसके गुण उसकी छवि से ही तो वो निकल रहा है ना वाइब्रेशन, क्योंकि सागर है ना तो लहरें कंटिन्यूस निकल रही है, उसकी तुलना या तो सागर से करते हैं या सूर्य से। चंद्रमा फिर भी कभी पूनम है तो कभी अमावस है, लेकिन सूर्य ऐसा नहीं है। नदियां कभी बाढ़ है तो कभी सूखी है, लेकिन सागर ऐसा नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो वहां से कांस्टेंट पॉजिटिव वाइब्रेशन फैल रहा है, जैसे सूर्य से फैल रहे हैं ना, वो भी है। तो एयर में सब प्रकार के वाइब्रेशन है। जैसे एक एक टीवी चैनल देखो, स्टार प्लस, जी टीवी, पीस ऑफ माइंड, सत्संग, आस्था, ये वो, यहां पर भी अगर मैं रिसीवर सेट को उस पर कनेक्ट कर दूं तो मैं कैच कर सकती हूँ? नहीं। तो हर जगह है वो तो, लेकिन डिपेंड करता है मैंने कनेक्ट किससे किया। तो हर जगह जिस तरीके से टीवी चैनल और रेडियो चैनल के वाइब्रेशन है, ऐसे ही हर आत्मा अपने आप में एक टीवी चैनल है, अपने आप में एक टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन है, और इतनी सारी आत्माओं के वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स में है, और उसके साथ साथ उस परम टीवी के भी, उस परम रेडियो के भी, उस परम सत्ता के भी, उस परम पिता के भी वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स में है। अब मेरी चॉइस है मैं कौन सा बटन दबाती हूँ और किससे कनेक्ट होना चाहती हूँ। तो ये अटेंशन सिर्फ हमें रखना है कि मेरी ट्यूनिंग सदा सदा उस परम पिता के साथ रहे। तो राजयोग इसे याद करना सिखाना थोड़ी पड़ता है, तो बस अटेंशन रखना है ये किसको याद कर रहा है। प्रैक्टिकल जीवन में जरूरी बातों के लिए सोच चलती है, ठीक है, उसके बाद क्या चलता है? कहीं ना कहीं चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चला गया है उसको वहां से उसको डायरेक्ट करो, इधर लगना है। दिस इज राजयोग। तो चले अभ्यास करें थोड़ा। और जैसे पहले ही बताया, आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। हम व्यक्ति को भी याद करते हैं तो खुली आंखों से याद कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान को भी जब हम याद करें आंखें खुली रखें, तब ये अभ्यास मुझे काम आएगा चलते फिरते भी उसको याद करने में। वरना बैठकर अगर मैंने अभ्यास डाला आंखें बंद करने के, तब तो मैं कर भी लूं, लेकिन कितनी देर आप बैठकर, क्योंकि हम कर्म योगी है, मतलब कर्म करते समय मेरा उसके साथ योग लगना चाहिए। अब कर्म तो मैं आंख बंद कर नहीं कर सकती हूँ ना, रोटियां सेक रही हूँ और मैं कहूँ उसको याद करना है, जला देंगे रोटियों को। गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और आंख बंद कर लेंगे तो कर देंगे एक्सीडेंट। तो कर्म योगी माना ही खुली आंखों से कर्म करते हुए उस परम पिता परमात्मा में मन को लगा देना। तो चलिए हम उसको याद करते हैं अभी। तो उसके साथ बातें ही करनी है, संबंधों में हम बातें ही करते हैं, अपनी बातें शेयर करके हल्का होते हैं और एक मजबूती होती है, मेरे साथ कोई है ना, इसीलिए क्यों कहते हैं एक और एक ग्यारह हो जाते हैं, कि कोई मेरे साथ है। और ये तो कोई कौन है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, फिर भला डरने की क्या बात है। तो चलिए अभ्यास करते हैं। अपने आप को देखें, मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न किंतु शरीर के भीतर विराजमान, दो आंखों के मध्य, मस्तक के बीचों बीच मैं आत्मा विराजमान हूँ। देखे स्वयं को, मैं आत्मा प्रकाश का एक पुंज हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, मुझ आत्म ज्योति का प्रकाश चहुं ओर फैल रहा है। देखे अपने इस प्रकाशित जगमगाते हुए सुंदर स्वरूप को, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। जिस चैतन्य शक्ति से शांति और प्रेम के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं, अनुभव करें प्रेम और शांति को। ओहो, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये प्रेम, ये शांति मुझ आत्मा के मूल संस्कार है। ये संस्कार लेकर ही मैं पहली बार अपने घर परम धाम से इस धरती रूपी रंगमंच पर आई थी। यहाँ पाठ प्ले करते 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 मेरे ऊपर दूसरे दूसरे संस्कार चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, और उन अनेक संस्कारों के चढ़ने के कारण मेरे मूल संस्कार एकदम नीचे दब गए, मर्ज हो गए, और मर्ज होते होते मैं आत्मा उसे पूर्ण रूपेण भूल गई। लेकिन मेरा ये सौभाग्य, मेरा पिता परमात्मा रहनुमा बनकर इस धरती पर आकर मुझे पुनः स्मृति दिला रहे हैं कि मेरे मूल संस्कार आज भी मेरे साथ है। सिर्फ जरूरत है इसको इमर्ज करने की। तो मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं आत्मा मेरे मूल संस्कार इस समय इमर्ज है। मैं शांति का, प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। इसी प्रेम और शांति की अनुभूति के साथ मैं चलती हूँ उस दुनिया की ओर, उस घर की ओर जहाँ से मैंने यात्रा आरंभ की थी। देखें अपने आप को, मैं चमकती ज्योति वाइब्रेशन फैलाती हुई इस मस्तक के बीचों बीच से निकलकर ऊपर की ओर जा रही हूँ। देखें अपने आप को ऊपर ऊपर जाते हुए, इस कमरे से ऊपर नीले गगन में सूर्य चांद सितारों को भी क्रॉस करते हुए अब मैं पहुंच गई हूँ आसमान रूपी छत के ऊपर, जहाँ चारों ओर सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है, शांति और दिव्यता की तरंगे हैं। उन तरंगों को मैं अनुभव कर रही हूँ। गहन शांति का अनुभव, सुनहरे लाल रंग के प्रकाश वाली इस दुनिया के बीचों बीच मैं आत्मा ज्योति जगमगा रही हूँ। शांति के अनुभव से भरपूर मेरे ठीक सामने एक और चमकता हुआ दिव्य सितारा असीम प्रकाश की किरणें जिसमें से निकलकर चहुं और फैल रही है, ये है मेरे परम पिता शिव बाबा परम ज्योति, जिसको ही सत्यम शिवम सुंदरम कहकर पुकारते। यही वो मेरा पिता है जिसको मैं याद करती आई हूँ। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों और मस्जिदों में ढूंढती रही, पहाड़ों और कंदराओं में, पूजा की विभिन्न विधियों से जिसको मैं याद करती रही, ये वही मेरा परम पिता है, जिसके लिए कहा गया उसको पाना मुश्किल है, आज मैं उसके सम्मुख उसके सानिध्य में उसके प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित अनुभव कर रही हूँ। उनके प्रेम और शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा ऊर्जा को स्पर्श करते हैं और स्पर्श पाकर एक सुंदर सी प्यार की अनुभूति, एक हल्कापन, ये विचार मात्र कि अपने परम पिता के सानिध्य में हूँ मैं, वो परम पिता जिसको सारी दुनिया सर्वशक्तिवान कहकर पुकारती है, उसके गोद में, उसके सानिध्य में, उसके वाइब्रेशंस के अंदर जैसे कि मैं ज्ञान सूर्य का स्नान कर रही हूँ। कितना हल्कापन है, अब मैं अकेली आत्मा नहीं, पिता परमात्मा मेरे साथ है। अब मेरा कनेक्शन सदा के साथ बाबा आपके साथ है। आप मेरे माता पिता है बाबा, आप मेरे सखा बंधु है, आप मेरे जीवन साथी है, सब कुछ आप है। अब जीवन की हर राह पर आप मेरे साथ, तो फिर भला डरने की क्या बात। अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए आप मेरे साथ हैं। आप ऐसे बाबा हैं, मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो आप तक ही सीक्रेट रहेगा, किसी और को नहीं पता चलेगा। ये सोच कर ही मैं कितना अपने आप को लाइट और माइट से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। जो भी बातें हैं उसके सामने रख दे, हल्के हो जाए और उसके साथ एक प्यारा सा वादा, अब तुम ही मेरे मन के मीत हो, मन सदा तुम्हारे साथ होगा, जीवन की हर बात में आपसे मुझे गाइडेंस मिलेगा। इतने सुंदर भावों के साथ प्रभु पिता के वाइब्रेशंस की प्यारी अनुभूति के साथ अब मैं आत्मा लौटती हूँ वापस उस रंग मंच पर जहाँ मैंने कर्म करने हैं, और कर्म करते हुए पिता की याद में रहना है। इसी स्मृति के साथ अब मैं आत्मा उतरती हूँ नीचे, देखे अपने आप को सुनहरे प्रकाश वाली दुनिया से नीचे उतरते हुए, उतरते उतरते नीले आसमान की दुनिया में प्रवेश कर गई, और नीचे उतर रही हूँ सूरज चांद सितारों को क्रॉस करके, और नीचे नीचे, और अब देखे नीचे उतरते उतरते मैं आत्मा इस शरीर में आकर भृकुटी सिंहासन पर विराजमान, एक भरपूर आत्मा, एक प्रेम में शांति में आत्मा, जिसमें से प्रेम और शांति के वाइब्रेशन मेरे शरीर में भी भर रहे हैं तो चारों ओर के वातावरण में भी, और कर्म क्षेत्र में उतरते ही जिनके भी संबंध संपर्क में आऊंगी उनको भी यही वाइब्रेशंस मुझसे अनुभव होते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। तो रियल में मुलाकात कर पाए भगवान से, जिस जिसने महसूस किया सचमुच हमने उस अपने पिता का सानिध्य महसूस किया, जरा हाथ खड़ा करें। थोड़े से लोग, मतलब मन अभी भी भटकता है, तो जाने से पहले जो भी समय है इसको मन ट्रेन करके जाना। अगर ड्राइवर खाली जगह में खाली सड़क पे गाड़ी नहीं चला पाया तो फिर भीड़ भड़ाके वाले सड़क पर गाड़ी कैसे चलाएगा। तो रहे वे दो तीन दिन में अटेंशन रखना कि यहाँ से अभ्यास मेरा पक्का होकर जाए कि भीड़ भड़ाके वाली सड़क पे भी मेरी गाड़ी अच्छी से चले। ओम शांति।
ओम शांति। हम सभी इंदिरा दीदी जी का करतल ध्वनि से आभार प्रकट करेंगे, अपने इतनी सरलता से राज्यों की विधि हमें सिखाई जो आत्मा को सशक्त बनाती है। धन्यवाद दे दिया आपका। ओम शांति।